الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دیکھتے ہیں تفسیر سورة الكهف آیت نمبر 45 سے 59 تک ہم نے پچھلی آیات میں پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا دو باغ والوں کا قصہ کہ کیسے ان کے ایک نے اپنے باغ کے اوپر فخر جتایا اور ناشکری کی اور اس کو اپنا ہی کمال سمجھا تو اللہ تعالیٰ نے آن کی آن میں کس طرح اس باغ کو ختم کر کے رکھ دیا اور اس کے تمام مال کو بھی اور بعد میں وہ ہاتھ ملتا رہ گیا اور وقت گزر جاتا ہے لیکن انسان جو غلطی کر بیٹھتا ہے یہ تکبر کر کے اکڑ کے اللہ تعالیٰ کی طرف نعمتوں کی نسبت نہ کر کے اپنا ہی کمال سمجھ کے جو یہ غلطی کرتا ہے نا وہ پھر واپس ریورس نہیں ہو سکتی چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ان آیات میں کہ دنیا کی جو یہ نعمتیں ہیں نا یہ چاہے وہ باغ ہیں چاہے وہ مال ہے چاہے وہ صحت ہے شہرت ہے کوئی مقام اور مرتبہ ہے جس میں بھی لوگ بہت پھولے نہیں سماتے ہیں بڑے تکبر کرتے ہیں وہ چیزیں کتنی شارٹ لیوڈ ہیں کتنی عارضی ہیں کتنی جلدی ختم ہو جانے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے تو وہی جگہ جو ہری بھری ہو وہ پانی کے نیچے آ جائے سیلاب آ جائیں زلزلے آ جائیں ختم ہو کے رہ جائے آن کی آن میں ایسے ہو کہ پہچانی نہ جائے کہ یہ وہی جگہ ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے تو ایسے کر دے کسی بھی جگہ کو انسانوں کو پھر کس طرح کا رویہ ہمیشہ رکھنا چاہیے اور اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جن چیزوں پہ بھی وہ سمجھتا ہے کہ وہ فخر کر سکتا ہے وہ سب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کی اپنا کوئی کمال نہیں اس کی اپنی کوئی بھی اس کے اندر علم اور صلاحیتیں اور اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے لہٰذا ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکا رہے ہمیں اس واقعے سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر انسان کے اوپر عذاب آ بھی جائے اس کی ناشکری پہ تب بھی اس کو اللہ کی طرف ہی پلٹنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اب کیا فائدہ آنے کا اب تو کچھ سب ختم ہو گیا اب تو کوئی فائدہ نہیں رہا اس لیے کہ آیت نمبر 42 میں اگر آپ دیکھیں وَيَقُولُ یعنی وہ بار بار یہی کہتا رہا بار بار یہی وہ کہتا ہی جا رہا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا یعنی وہ پچھتا رہا تھا اس بات کے اوپر کہ کیا میں نے کیوں ایسا کر دیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو انسان کو پلٹ آنا چاہیے اور یہ آیات ہمیں اس بات کی یاد دہانی کرواتی ہیں کہ آپ کو کیسی کمپنی رکھنی چاہیے ایسے ہی دوست ہونے چاہیے جو اچھی نصیحت کریں جو سچ بتائیں نہ کہ صرف ہماری ہاں میں ہاں ملاتے رہیں اور ہماری تعریفیں کرتے رہیں اکثر ہمیں ایسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں بس ہاں میں ہاں ملائیں اور ہماری تعریف کرتے رہیں چاہے جھوٹی کریں چاہے سچی نہیں اصل خیر خواہ وہی ہے جو آپ کو سچ بات بتائیں اور اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی کی نعمت کو دیکھیں تو بجائے اس کے کہ دل میں جلن محسوس کریں یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر دے سکتا ہے اس کی نعمت پہ دیکھ کے ماشاء اللہ لا قوت الا بالله کہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ مجھے بہتر دے دے اس سے ٹھیک ہے लेकिन कभी दूसरों से इस बात के ऊपर हसद के जज्बात ना रखें कि इसको क्यों मिल गया। और फिर हमें तकब्बुर के नुकसानात पता चलते हैं कि तकब्बुर करने से बाज दफा इंसान से नेमत इस दुनिया में भी छिन जाती है। और सबसे बड़ा तो लेसन यही है जो मैंने आपको बताया कि दुनिया की कोई नेमत, कोई दौलत हमेशा की नहीं है। वो अल्लाह ताला चाहे तो जब चाहे दे दे और जब चाहे वापस ले ले। इस लिहाजा हम डिजर्व नहीं करते, हमारा हक नहीं है कि हमें मिलनी ही चाहिए और क्यों हमसे छिन गई और क्यों हमें उसे वापस ली गई। इस पे बजाय गुस्सा करने के, नाराज होने के, अल्लाह ताला से नाराज होने के, करने का काम ये अल्लाह की तरफ पलट आए और इस चीज, जब नेमत आपके पास हो तब भी ये सोचें कि ये मेरी नहीं है, ये तो अल्लाह ही की अमानत है। और अगर खुदा ना खास्ता छिन जाए तो तब भी यही सोचें कि जिसने दी थी उसकी मर्जी है, जब चाहे दे दे जब चाहे ले ले, मेरा कौन सा कोई हक था। शुक्र है कि उसने इतने अरसे भी दी रही मुझे। तो आज की जो आयात हैं वो इन्हीं बातों को दोबारा हमें री इन्फोर्स करती हैं कि दुनिया की ये जिंदगी क्या है। पिछली आयतों में भी हमने यही पढ़ा देखा, दो इंसानों के साथ जो जो बाग का किस्सा आया उसमें भी इंसान को पता चला कि ये जिंदगी क्या है। और यहाँ पे भी पता चल रहा है इन आयात में कि हम इस दुनिया की जिंदगी को किस तरह से समझ के चलें, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए इस बारे में। तो वद्रिब लहुम मसल अल हयात दुनिया, और बयान कीजिए इनके लिए मिसाल दुनिया की जिंदगी की, यानी दुनिया की जिंदगी क्या है इसकी मिसाल बयान कीजिए। गराबा कहते हैं मारने को, और इसी से किस्से बयान करने के लिए भी ये लफ्ज आता है। अब देखें एक दुनिया की जिंदगी की मिसाल यहां पर किससे दी गई, क्या मा इन पानी से, ठीक है, जैसे पानी अनजलनाहु मिनस्समा, उतारा हमने इसको आसमान से, यानी आसमान से उतारा। पानी तो बादलों से उतरता है, बारिश होती है, तो आसमान क्यों कहा गया, इसलिए कि अरबी में ना जो चीज भी ऊपर होती है उसको समा कहा जाता है, ठीक है, ऊपर की चीज को, छत को भी मसलन आप समा कह सकते हैं। तो हमें बताया गया कि दुनिया की जिंदगी की मिसाल ऐसी है जैसे पानी आसमान से उतरा, फख्तला तो अभी ही नबातुल अर्द, तो फिर रोल मिल गई इस पानी के साथ जमीन की नबातात, जमीन का सब्जा, ठीक है, इशारा इसकी तरफ के, यानी बारिश पड़ी तो इस जमीन के ऊपर जो मट्टी के साथ बारिश का पानी मिला तो नबातात उगी। फिर फा असबाहा हशीमन, फिर हमने कर दिया उनको रेजा रेजा, तजरूह रिया, उड़ाती फिरती हैं उसको हवाएं। दुनिया की जिंदगी की मिसाल अल्लाह ताला ने ऐसे दी है जैसे पानी उतरा आसमान से, और आप देखते हैं जब बारिश होती है तो उसके बाद किस तरह हरियाली हो जाती है, हर तरफ ग्रीनरी, खेतों में फसलें लहलहाने लगती हैं। लेकिन चंद दिन बाद ही क्या होता है, फिर वो जो लहलहाती हुई फसल होती है वो खत्म हो जाती है, वो जो सब्जा होता है वो चूरा चूरा हो जाता है, और उड़ता फिरता है क्योंकि वो बिल्कुल भूस बन जाता है ना, रेजा रेजा। आप पत्तों से मिसाल समझ लें, अगर आपने खेतियां तो नहीं देखी होंगी लेकिन पत्तों से आप मिसाल देखेंगे, पत्ते हैं लहलहा रहे होते हैं, और उसके बाद क्या है, जब खिजां आती है, ये तो सबने ही देखा होगा ना, जब खिजां आती है तो क्या होता है, वो ही पत्ते गिरने लगते हैं, और उसके बाद वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि यानी चूरा चूरा, और फिर इतने यानी बेहैसियत हो जाते हैं कि हवा उनको उड़ाए फिरती है, वो बस कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं। यही दुनिया की जिंदगी है। कैसे इंसान जब पैदा होता है ना, इंसान की पैदाइश के बाद देखिए वो जवान होता है, ऐसे ही वो जवानी ऐसे ही है जैसे लहलाता हुआ एक सरसब्ज खेत, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लगता है, उसकी कुव्वतें जायल होने लगती हैं, वो कमजोर होने लगता है, वो अपने बुढ़ापे की तरफ जाने लगता है, और फिर एक दिन वो पत्ता गिर जाता है, यानी उसको मौत आ जाती है, और फिर वो कब्र में जाता है तो रेजा रेजा हो जाता है, चूरा चूरा हो जाता है, और उसका कुछ भी नहीं रहता, बिल्कुल बेहैसियत। ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ जो भी चीज है आप देखें वो कम हो रही है, वो अपने जवाल की तरफ जा रही है। जिस दिन से इंसान पैदा होता है ना, उसकी जिंदगी में से वक्त माइनस होने लगता है, वो कोई बढ़ नहीं रहा होता, असल में क्या है, माइनस हो रहा है उसका टाइम। अगर वो 60 साल की जिंदगी 60 ईयर्स की लेकर आया है, तो जब से पैदा होता है एक एक दिन कम होता जा रहा है उसकी जिंदगी का। जब वो 1 साल का होता है तो उसकी 60 साल की जिंदगी में अब 59 ईयर्स रह गए, फिर वो एक और साल जीता है तो अब 58 ईयर्स रह गए, एक और साल जीता है तो 57। हम यहाँ पे खुश हो रहे होते हैं, हालांकि उसकी जिंदगी से वक्त निकल चुका है, उसका तो नुकसान हो गया। इसी तरह आप देखें जवानी है, इसी तरह आप देखें दौलत है, इंसान की सलाहियतें हैं, इंसान के पास जो नेमतें हैं वो क्या होती जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम होती हैं उसकी में। जैसे अल्लाह ताला ने मिसाल दिया ना, वल आसर इन्नल इंसान लफी खुसर, आसर के वक्त की कसम इंसान खसारे में, सब इंसान खसारे में। अब इल्ल लजीना वाली बात तो आगे आएगी, लेकिन सब इंसान खसारे में, इसलिए कि वो लूज कर रहे हैं अपने वक्त, अपनी सलाहियत, अपनी जिंदगी को लूज कर रहे हैं, बढ़ नहीं रही है, कम होती जा रही है। अब थोड़ी देर के लिए एक बहार आती है जिसको देखकर किसान खुश होने लगता है, और उसको लगता है कि कितना अच्छा मेरा खेत लहलहा रहा है, लेकिन ये सब टेम्प्ररी है, आरजी बहार है, बहुत जल्दी इसको खत्म हो जाना, मगर इंसान धोखा खा जाता है और उसको लगता है कि ये बहार ही हमेशा रहने वाली है, हालांकि वो हमेशा रहने वाले नहीं है। और कुराने पाक में 7-8 जगह पर ये मिसाल दी गई है, बारिश के पानी के साथ, पानी के साथ दुनिया की जिंदगी की, और खेत के साथ, कि किस तरह दुनिया की ये जिंदगी ये थोड़ी देर की बहार है, जिसको तुम हमेशा की समझ चुके हो कि बस जरा देर की तो है, ज्यादा देर की नहीं है। और सूरह हदीद में तो अल्लाह ताला ने इसको मिसाल दी है, इसी तरह यही मिसाल दी है कि खेत है, एक वो लहलाता खेत, उसके अंदर देख के उसको किसान बड़ा खुश हो रहा है कि मेरा खेत तो बड़ा फल फूल रहा है, बड़ा हरा भरा हो रहा है, और फिर वो एक दिन कैसा हो जाता है, यही दुनिया की जिंदगी की मिसाल है। और इंसान को ना अक्सर समझ नहीं आती, वो जब इसके अंदर मशगूल होता है इस दुनिया के अंदर, तो वो उसको ऐसा, इसका एक नशा है ना, कि उसको लगता है ये कैसे कभी खत्म हो सकती है, उसको फील भी नहीं हो रहा होता कि उसका नुकसान हो रहा है, वो खुश हो रहा था इसके ऊपर। हालांकि देखिए सूरह यूनुस में भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना 24 में, कि दुनिया की ये जिंदगी ऐसे है, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आसमान से हमने पानी बरसाया, जमीन की पैदावार जिसे आदमी भी जानवर भी सभी खाते हैं, खूब घनी हो गई, फिर ऐन उस वक्त जबकि जमीन पे बहार थी और खेतियां बनी समरी खड़ी थी, और उनके मालिक समझ रहे थे कि अब हम इनसे फायदा उठाने पर कादिर, या के एक रात को या एक दिन को हमारा हुक्म आ गया और हमने इसे ऐसा गारत करके रख दिया गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। और आप देखें वाकई अल्लाह ताला फरमाता है इस तरह हम निशानियां खोल खोल के दिखाते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले। तो वाकई अचानक कोई दुनिया से चला जाता है और उसके बाद क्या होता है, ऐसे लगता है कभी आया ही नहीं था, ये तो कभी था ही नहीं। लोग भी भूल जाते हैं, उसके प्यारे भी भूल जाते हैं एक दिन उसको, एक दिन उसकी भी याद कम होने लगती है, जितना मर्जी रोने वाले हों मगर एक दिन वो भी रो के थक जाते हैं, वो भी अपने कामों में लग जाते हैं। हमेशा कोई नहीं रो सकता और कोई किसी के साथ मर नहीं सकता, लिहाजा इस दुनिया को यही समझना चाहिए कि ये बहुत आरजी है, ठीक है, ये खूबसूरत लगती है उस वक्त, अट्रैक्टिव लगती है उस वक्त जब इस पे बहार है, मगर बहुत जल्दी इस बहार ने खिजां में बदल जाना। अल्लाह अकबर। अब इंसान अगर कोई भी 40 बरस का है और वो समझता है कि भाई मेरे पास तो अभी बड़ा टाइम है, तो वो ये सोचे कि पिछले जो उसके साल गुजरे हैं वो कितनी तेजी से गुजर गए, जितनी तेजी से वो गुजर रहे हैं ना ये 40 साल का वक्त, उतनी तेजी से अगले भी, अगले तो 40 साल हैं या 30 साल हैं या 20 साल हैं, वो भी गुजर जाने। हर इंसान को अल्लाह ताला ये याद दहानी कराता है। और आप देख लें कि हर हफ्ते हम ये सूरा पढ़ते हैं, मगर कितना हम अपनी इस जिंदगी के अंदर फिर भी इतने मगन हो जाते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि इस पे खजाम भी आ जाने। अगर इंसान गौर करे तो उसकी जिंदगी में से कितना वक्त तो खाने पीने सोने और अपनी हाजतें और अपनी जरूरियात पूरा करने, इन चीजों में गुजर जाता है। काम ही वक्त रह जाता है जिसके अंदर कोई वो प्रोडक्टिव वैसा काम कर सकता है जो उसकी आखरत के लिए होता है। ज्यादा वक्त वो भाग दौड़ में लगा हुआ, ये बना लूं, ये संवार लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, और ये नहीं सोचता कि जिसके लिए मैं इतना वक्त लगा रहा हूं आखिर को इसने खत्म हो जाना है। ये जो वक्त मैं लगा रहा हूं इसकी तो कभी भी ये काम पूरे नहीं हो जाने, कभी कोई दिन नहीं ऐसा होगा कि आप कहेंगे अब मैं फारिग हो गया, अब मैं अपनी आखिरत के लिए वक्त लगाऊंगा। नहीं, हर दिन आपके पास यहाँ की मशगूलियात, यहाँ के इतने ही काम दोबारा जमा हो जाएंगे, सो के फिर उठेंगे फिर ही उतने काम जमा हुए होंगे, फिर उनको करने में लग जाएंगे। हमें लगता है कि ये सारी हमारी इतनी जरूरतें हैं, हम तो बस इनके बगैर तो हमारा गुजारा नहीं। ठीक है, चंद चीजें जरूरतों की हैं, मगर उसके पीछे ही सारी जिंदगी को लगा देना, ये कहाँ की अकलमंदी है। ऐसी जिंदगी जिसने बिल्कुल फना हो जाए। अगर देखा जाए तो हमारे जिंदगी के 15 साल, किसी के 20 साल, किसी के 30 साल तो बिल्कुल ही ऐसे ही गुजरते हैं कि लाशौरी में ही, बेहोशी में ही गुजर जाते हैं, इंसान को पता ही नहीं चलता कि गए गए काम, बेखबरी के अंदर गुजर जाते हैं, अक्ल ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी। जब समझ के दिन शुरू होते हैं फिर भी इंसान हमाकत के साथ उनको गुजार दे तो क्या लेकर जाएगा। सोचने समझने की जरूरत है। ये आयात हमें बता रही है कि इस दुनिया की हकीकत क्या है, जिंदगी की हकीकत क्या है, इसको देखभाल के गुजारो। ये तो इतनी आरजी है। और मिसाल पानी से ही क्यों दी गई, आप देखिए ना, सुभान अल्लाह, ये इतनी प्यारी मिसाल है। पानी को अगर आप हाथ में पकड़े ना तो आपके दोनों तरफ से, मुट्ठी बंद करें, आपके दोनों तरफ से पानी स्लिप करने लगेगा। आपको लगता है ना कि ये मेरे कब्जे में है ये पानी, लेकिन वो स्लिप कर रहा है, वो बहता जा रहा है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि पानी आपके हाथ में ही रहे। इसी तरह ये जिंदगी, आपको लगता है मैं इन कंट्रोल हूं, मैं इन पावर हूं, मेरे हाथ में है ये जिंदगी, मैं कहां भागी जा रही है, लेकिन वो भाग रही है, वो भाग रही है, वो जा रही है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो खत्म हो जाएगी। जैसे मुट्ठी में आप खोलेंगे तो उसमें कोई पानी ही नहीं होता, वरना हमने अपनी तरफ से होल्ड करके रखा हुआ पानी। फिर आप ये देखें कि पानी जो है, ठीक है, इंसान की जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है, उसके बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो ही पानी बढ़ जाए, ज्यादा हो जाए, तो आप देखते हैं फिर कैसे फ्लड आते हैं जिसमें इंसान गर्क हो जाते हैं, डूब जाते हैं, उसका सब कुछ डूब जाता है। इसी तरह ये दुनिया है, अगर आप इसको उतना ही लेंगे जितनी आपकी जरूरत है, फिर तो जितना आपके सर्वाइवल के लिए चाहिए, फिर तो ठीक है, फिर तो आप कायम दायम, जाहिर है जरूरत है, उससे आप कायम दायम रहेंगे, लेकिन अगर ये हद से बढ़ गई ना तो ड्राउन कर देगी, गर्क कर देगी, कुछ नहीं रहेगा। अगर ये दिल में चली गई और दिल में इसकी मोहब्बत बैठ गई तो इंसान किसी तरफ का भी नहीं रहेगा। अगर इसी में लग गए, इसी में गर्क हो गए तो डूब जाएंगे। फिर इसी तरह पानी जो है इसके अंदर जब इंसान दाखिल होता है तो भीगने से बच नहीं सकता। कोई इंसान कह नहीं सकता मैं पानी में रहता हूं लेकिन मैं पानी में चला गया लेकिन मैं भीगे बगैर बाहर निकल आया, ऐसे नहीं हो सकता। इसी तरह दुनिया है, इसमें जो भी रहता है उसको फितने भी आते हैं, वो फितनों से महफूज नहीं रह सकता। इम्तिहान आएंगे, आफतें आएंगी, बलाएं आएंगी, बहुत तरफ से वो आजमाया जाएगा। फिर देखिए पानी आसमान से उतरता है और उसके बाद क्या जमीन पे रहता है? नहीं, वो चला जाता है कोई नदी में, नालों में, दरियाओं में और कुछ देर बाद वहां पे नहीं होता। इसी तरह ये दुनिया की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी आती तो कतरा कतरा करके है बारिश की तरह, लेकिन उसके बाद गायब हो जाती है, चली जाती है, पता भी नहीं चलता कि कहाँ चली गई। कितना भी ज्यादा पानी बरस जाए लेकिन उसके बाद क्या होता है? खुश्क हो जाता है, कभी भी वो वहीं नहीं खड़ा रहता। तो सुभान अल्लाह, बड़ी जबरदस्त मिसाल है जिससे अल्लाह ताला ने दुनिया की जिंदगी को बताया है। और ये बदलते हुए मौसम, ये खेतों पे आप देखते हैं बहार और फिर खिजां, इससे खुद क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं जहनी तौर पे हम मेंटली क्यों नहीं तैयार होते कि मेरे ऊपर भी खिजां आनी है, चाहे मैं कितनी ही कोशिश करूं, मैं कोई सर्जरीज करा लूं, अपनी फेस लिफ्ट करा लूं, अपनी एक्सरसाइज कर लूं, अपनी डाइट कंट्रोल कर लूं, आपकी सेहत के लिए तो फायदेमंद हो सकती है लेकिन इस खिजां से नहीं बचा सकती। हर साल खिजां हमें मैसेज देती है कि मुझे देखो, तुम्हारी जिंदगी की बहार भी इस तरह ही खिजा में बदल जाएगी। आपकी जिंदगी में रौनकें होती हैं, एक दिन कितनी गहमा गहमी, बच्चे, घर बार, गाड़ियां, सब चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है? या तो इंसान उसको छोड़ के चला जाता है या वो इंसान को इसी जिंदगी में छोड़ के चले जाते, घर बार भी चले जाते हैं, औलाद कहीं की कहीं पहुंच जाती है और एक इंसान ऐसे ही हो जाता है कि वीरानी की तस्वीर बन गया। क्या इससे बात समझ नहीं आती? अल्लाहु अकबर, ये दुनिया की जिंदगी की मिसाल है और बड़ी लोगों के लिए सोचने की बात है। आप देखिए, इंसान कहता है ना कि मेरे लेटेस्ट मॉडल की गाड़ी ले ली, अपग्रेडेड घर बना लिया, बिल्कुल मतलब आज के मुताबिक का, बिल्कुल आज की जो इन है चीजें वो इसके अंदर लगा ली, ब्रांड न्यू ये खरीद लिया। फिर कपड़े आप बनाते हैं ब्रांड न्यू, जो लेटेस्ट आजकल डिजाइनिंग चल रही है, लेटेस्ट फैशन चल रहा है। उसके बाद देखें, हर चीज पे खजान नहीं है क्या? हर चीज हमें मैसेज नहीं दे रही? वही घर पुराना हो रहा है, वही गाड़ी पुरानी हो रही है, एक दिन इतने शौक से ली थी उसके बाद क्या उसका हाल हो गया? क्या ये सब बता नहीं रहा कि ये गहमा गहमी खत्म हो जाने वाली है? क्यों भूल जाते हो? अल्लाहु अकबर। अल मालू अल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया। फिर दो ही चीजें हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा अपने अंदर गुम कर लेती हैं, मशगूल कर देती हैं और उसको अब भुला देती हैं कि एक दिन खजां आनी है। और वो दो चीजें, वैसे तो और भी चीजें हैं लेकिन दो चीजें मेन है। माल, माल में क्या क्या आता है? आपकी जॉब है, आपका बिजनेस है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टॉक्स में या कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट्स की गई हैं, वो सारी माल में आ गई। माल और बेटे, बनून, ये जीनत है दुनिया। अच्छा, इनको जीनत, जीनत क्या चीज होती है? डेकोरेशन, यानी इनसे इंसान सजता है अपने आप को, सजा हुआ महसूस करता है, यानी उसके अंदर एक होती है कि मेरे पास ये है। जैसे माल भी है इंसान के पास तो उसकी शो ही और हो जाती है, उसके पहनना ओढ़ना, उसका घर बार, उसके सवारियां, उसकी ये सब चीजें बदल जाती है ना। जाहिर है माल की एक अपनी शो होती है, उसमें नजर आने लगता है। इसी तरह बेटों को इंसान समझता है कि ये भी मेरे लिए एक ब्यूटी है। बेटों की क्यों बात की गई जबकि बेटियां भी तो हैं? एक तो इसकी वजह ये है कि उस जमाने में भी और आज भी दुनिया के अंदर लोगों का, अक्सरियत का ये व्यू है कि कि बेटे जो हैं वो हमारी शान और शौकत हैं, बेटे जो हैं वो बस होने चाहिए। और कोई औरत 2 से 3 बेटियां पैदा कर ले तो उसको कहते हैं ये तो बेटियां ही पैदा करती जा रही है। बाज मर्द दूसरी शादी करते हैं कि हमें बेटा चाहिए। कभी आज तक किसी को आपने ये नहीं देखा होगा कि वो बेटी के लिए दूसरी शादी करें कि अब मैं इससे बेटे ही होते जा रहे हैं, मैं दूसरी शादी। आप देखते हैं कि बेटे की तमन्ना इंसान के अंदर होती है। दूसरी इसका एक और भी बताया उलमा ने, उन्होंने कहा कि यहाँ पे बेटे ही मुराद नहीं है बल्कि बनीन से मुराद औलाद है। बनीन से क्या मुराद है? औलाद। इसलिए कि अरबी में जमा मुजक्कर जब कहा जाता है ना, ये जमा मुजक्कर है बनीन, उसमें मुअन्नस भी आ जाती है। जैसे आप अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, अब सारी औरतें भी बैठे हैं तो अस्सलाम वालेकुन्ना नहीं कहते हम, कुन्ना हालांकि औरतों के लिए तो कुन्ना होना चाहिए लेकिन अलैकुम ही कहते हैं क्योंकि जमा मुजक्कर मुअन्नस को भी अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो इससे उन्होंने कहा कि ये एक जनरल बात है, यहाँ पे बनीन कह के मतलब लिया गया औलाद, कि औलाद भी, और ये भी मीनिंग सही हो सकता है कि औलाद ले लें या बेटे ले लें, कि औलाद भी इंसान को जीनत देती है। देख लेना आप लोग अपनी औलाद के ऊपर कितना फखर करते हैं और उनके कारनामे कितने बयान करते हैं। आप ये भी नोट कीजिए कि जब कोई खवातीन या मर्द कहीं बैठे होते हैं, एक मजलिस होती है, तो लोग अपने बच्चों की कितनी बात करते हैं, मेरे फलां बच्चे ने ये कर लिया, फलां को उनके कारनामे गिनवाते जाते हैं, उनकी लियाकत गिनवाते हैं, उनकी जो यानी उनके जो दुनिया के अंदर जितनी तरक्की है वो गिनवाते हैं या दीन के अंदर। तो ये जीनतुल हयात दुनिया, जीनत है, आरायश है, शो है दुनिया की जिंदगी की। जैसे कहते हैं फलां के पास बड़ा पैसा है, फलां के बच्चे कितने लायक हो गए हैं, फलां के बेटे देखो के कैसे हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया ये दुनिया, ये नहीं कहा कि ये बुरी चीज है, मगर ये सिर्फ दुनिया की जिंदगी की डेकोरेशन है। अभी दुनिया की जिंदगी समझ आ गई आपको कि क्या है? पिछली आयत से समझ आई है ना कि क्या है, कितनी आरजी है, ये उस आरजी की डेकोरेशन है। ठीक है, जिस माल को गिन गिन के इंसान रखता है वो भी बस एक थोड़ी देर की, एक यानी ऐसी चीज है जिसको देख के बंदा थोड़ी देर के लिए खुश हो जाए। बच्चे भी ऐसी चीज है जिसको देख के इंसान खुश हो जाता है। ठीक है, अब लेकिन फरमाया ये बाकी रहने वाली नहीं है, इसलिए कि दुनिया की जिंदगी नहीं बाकी नहीं रहना, ये बाकी रहने वाली नहीं है और ये कोई अल्लाह ताला के हाँ बहुत बड़े दर्जे इंसान को दिलाने वाली नहीं है। असल चीज क्या है जो बाकी रहने वाली है? वल बाकियात सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। अल्लाह ताला के पास सवाब के एतबार से और उम्मीद के एतबार से बाकी रहने वाली क्या चीज है? माल और बेटे नहीं है। माल और बेटे से आप अल्लाह के हाँ सवाब नहीं पा सकते और ना ही इसकी उम्मीद रख सकते हो कि हाँ, दुनिया में ही लोग कहने लगते हैं मुझे तो अपने बच्चों से कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, कहने लगते हैं ना मुझे रिश्तेदारों से कोई उम्मीद नहीं। अगर उम्मीद लगानी है तो अल्लाह से उम्मीद लगाओ, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ जो उम्मीद लगाएगा ना तो वो उसकी उम्मीद को पूरा करेगा। तो बताया गया कि जिन चीजों को तुम समझते हो कि यही है और इन्हीं से तुम खुश हो रहे हो और इन्हीं के अंदर अपना वक्त लगा रहे हो और इन्हीं के साथ तुम गुम हो, इसी जॉब और घर बच्चे, जॉब और घर बच्चे यही हमारी जिंदगी है कि इसके गिरदी जिंदगी, लेकिन ये अल्लाह ताला के पास तुम्हें कोई आला दर्जात पे पहुंचा नहीं सकती। ठीक है, तुम्हें क्या चीज है जो अल्लाह के हाँ दर्जे दिलवा सकती है? वो है बाकियात तो सोलेहात। हालांकि लफ्ज होना था सोलेहात अलबाकियात, अरबी में इस तरह होता है। ठीक है, लेकिन कहा गया, उलट कर दिया गया, बाकियात तो सोलेहात क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि यहां पर एम्फसाइज ताकीद बाकी के ऊपर है कि बाकी रहने वाली क्या चीज है। तुम सोचते ना ये चीजें हैं माल बेटे बस यही बाकी रहने हैं, जैसे कि ऐसे उनके साथ तुम जिंदगी गुजारते हो, हालांकि बाकी रहने वाली क्या चीज है? ये माल और बेटे नहीं है, बाकी रहने वाली है नेकियां जो तुम्हारे साथ रहती हैं। वो हदीस में आता है ना, इंसान के 3 दोस्त हैं, एक दोस्त तो मरते ही उसका साथ छोड़ जाता है, दूसरा दोस्त कब्र तक उसको लेकर आता है फिर उसका साथ छोड़ जाता है, और तीसरा उसके साथ कब्र में जाता है। पहला दोस्त कौन सा है जो आंखें बंद होते ही उसका साथ छोड़ जाता है? वो है उसका माल। अब उसके माल उसके किसी काम का नहीं है, उसको साथ छोड़ गया। दूसरा दोस्त है उसके रिश्तेदार, जो उसको कब्र तक छोड़ के जाते हैं, कब्र में दफना के फिर वो वापस चले जाते हैं, वो भी साथ नहीं जाते इससे आगे। और तीसरा, जो दोस्त उसके साथ जाता है वो उसका नेक अमल है जो उसके साथ रहेगा। अब देखें कि ये बाकियात तो सालेहात क्या हैं, हम कैसे इनको पाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमको ताकत नहीं है कि तुम रात को कयाम करो, ना ही तुम्हारे पास ताकत है दुश्मन से लड़ने की, ना ही तुम्हारे पास इस्तात है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, तो कम से कम ये जरूर करो कि सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर, ये है बाकियात सालेहात। तो ये कहते रहो, ये है बाकी रहने वाली। उलमा कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बाकियात सालेहात है। बाज मुफसरीन ने लिखा है कि 5 फर्ज नमाजें बाकियात सालेहात। और इब्ने अब्बास तो कहते हैं कि हर अच्छी बात, चाहे वो जिक्र इलाही हो, चाहे वो इस्तिगफार हो, चाहे वो दुआएं हो, चाहे वो अच्छी नसीहत हो, चाहे वो अच्छा मशवरा हो, चाहे कोई भी अच्छा वाज हो, ये सारी बाकियात सालेहात है। यानी तमाम नेकियां जो इखलास के साथ की जाए वो बाकियात सालेहात है। इनसे तुम्हारे अल्लाह के यहाँ दर्जात बुलंद होते हैं। बाकी सारी चीजें तुम्हें कोई, चाहे आपके घर हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके पैसे हैं, या आपका स्टेटस अल्लाह के यहाँ अच्छा नहीं कर सकते। चाहे आपने पीएचडी डिग्री ली हुई है, आपने मेडिकल डिग्री ली हुई है, दुनिया जहान में आपका बिजनेस फैला हुआ है, चाहे आप कहें कि मेरा घर सामान से भरा हुआ है, लेटेस्ट मॉडल की मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास फेसबुक पे 1 लाख फॉलोअर है, मेरे फलां जगह पे मेरे इतने फैंस हैं, या मेरे बैंक में इतने मिलियन डॉलर पड़े हुए हैं, या मेरी शोहरत बहुत ज्यादा है, इनमें से कोई भी बाकियात तो साले आप नहीं है, कोई आपको अल्लाह की नजर में ऊपर नहीं करती। ठीक है, तो इसलिए जो चीज आपको अल्लाह की नजर में ऊपर करेगी वो ये है। अब हमें अपने आप से एक सवाल करना है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं ये बाकियात सालेहात को जमा करने की, क्योंकि इन्होंने तो हमारे साथ जाना है। कितना टाइम हम इनके लिए लगा रहे हैं, कितना पैसा हम इनके लिए लगा रहे हैं कि हमारे पास बाकियात सालेहात हो, कितना हमारा फोकस है, कितनी हमारी मेहनत है, कितनी हमारी प्लानिंग है, कितना हम अपनी जान को खपा रहे हैं इसके लिए, जबकि हमें दुनिया की जिंदगी की हकीकत तो मालूम हो गई। इसीलिए ऐसे ही नहीं है कि वो कहेंगे कम लबिस तुम लबिस ना यौमन औ बाद यौम, कि उनसे पूछा जाएगा कितना रहे तो वो कहेंगे एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। ऐसे ही नहीं है, वो वहां जाके इस दुनिया की जिंदगी सिर्फ दिन का एक हिस्सा ही लगेगी। कितनी तेजी से, कितनी तेजी से मैं और आप अपने अंजाम की तरफ भागे चले जा रहे हैं। हम चाहें ना कि हम आज की डेट को रोक लें, हम नहीं रोक सकते, हम नहीं रोक सकते। हम चाहें कि हम इस टाइम को रोक लें, ये हम नहीं रोक सकते। हम चाहें हमारे बच्चे इतने छोटे ही रह जाएं, ऐसे प्यारे प्यारे हमारे सामने नन्हे मुन्ने भागते दौड़ते ऐसे ही रह जाएं, नहीं रोक सकते इसको। हम चाहें हमारी चीजें पुरानी ना हो, हम नहीं रोक सकते, हम तो कुछ भी नहीं रोक सकते। भाग रहा है वक्त, और जितनी तेजी से इस वक्त भाग रहा है, पता नहीं शायद पहले वक्तों का नहीं था इस तरह से। वक्त से बरकत उठ चुकी है, और लोग मानते हैं, जो आप बड़े बूढ़ों से बात करें ना, वो कहते हैं नहीं, हमारा वक्त इतनी तेजी से नहीं गुजरा जिस तरह की आज गुजर रहा। वाकई हमारे हाथों से, वाकई पानी जैसे आप हाथ में पकड़ ले, इस तरह हमारी जिंदगी भागे चली जा रही है। और कभी इंसान को एहसास भी होता है, वो चाहता है इसको रोक ले, नहीं रोक सकता। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है। देखिए, हम जो चीज हमारे हाथ में ही नहीं, हम क्या करें फिर, हम बेबस हैं। अरे ना डेट रोक सकते, ना टाइम रोक सकते, ना ये साल रोक सकते, क्या करें फिर हम। तो अब बेबसी से क्या बैठे रहे, देखते रहे कि जा रहे हैं हमसे। नहीं, इल्लल्लदीना आमनू वामिलुस सालिहात, जो सूरह असर के अंदर, और यहाँ पे उसी को बाकियात सालेहात कहा गया। वहां पे भी आमिलुस सालेहात है, वहां पे बतवासो बिलहक है, वहां पे भी बतवासो बिसब्र है, वो सब बाकियात सालेहात है। ईमान है, बाकियात सालेहात है। इनको जल्दी जमा कर लें, जल्दी कर लें, इससे पहले कि खिजां आ जाए, इससे पहले कि वक्त हाथ से निकल जाए। इनकी तरफ तवज्जो कर लें। प्रॉब्लम ये है, आज हमारी जिंदगी वो हो गई है जिसमें हमारे पास सोचने का भी वक्त नहीं है। सॉरी टू से, हमारे पास नहीं है वक्त कि हम सोचें भी कि हमारी एक ऐसी लाइफ भी है जिसमें हमने जाना है, उसमें हमें इसकी जरूरत होगी। हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, हम कमाने के पीछे, घर के पीछे, कभी किसी चीज को संवारने में, कभी किसी चीज को संवारने में, कभी अपने आप को, कभी अपनी इर्द गिर्द की उसको, कभी वेकेशन, कभी बच्चों के कोई काम, कभी हम इतना भाग रहे हैं कि हमें यही नहीं पता चलता कि हमारी जिंदगी इतनी तेजी से जा रही है और इसके अंदर हमने अभी कुछ जमा नहीं किया। ये ना हो कि जाने का वक्त आ जाए, खजान आ जाए और फिर याद करते रहे उस बहार को कि कभी बहार थी और हम कर सकते थे। जब खजान आने लगती है ना, इंसान का बुढ़ापा आने लगता है, तब होश आने लगती है। वो सबको तो तब भी नहीं आती, मगर जिनको आती है, लेकिन वक्त हाथ से गुजर चुका होता है ना, हिम्मत रह जाती है, ना ताकत रह जाती है, ना हाथ में कुछ रह जाता है, बस फिर एक बिस्तर पे ही पड़े रहते हैं। तो बाकियात तो सालेहात की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। और देखिए, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह अकबर, ला इलाहा, ये सारी बताई हैं, ये वो बाकियात तो सालेहात है जो हर एक की रीच में है। हर एक इनको कर सकता है, हर एक ये जमा कर सकता है। ये तुम्हारे दर्जे अल्लाह के यहाँ बुलंद करेंगे, ये बेहतर है सवाब के एतबार से। इनके ऊपर तुम उम्मीद रख सकते हो कि मैं अगर ये जमा कर लूंगी तो मुझे उम्मीद है कि ये वहां पे मेरे काम आ जाएंगी। ये हैं वो चीजें जिनके लिए तुम अच्छी उम्मीद रख सकते हो, बाकी किसी चीज की भी नहीं रख सकते। तो बाकी चीजें तो आराइश हैं, ये यहाँ पे अच्छी लगती हैं। अगर कहता है ना आदमी के हदीस में आता है, आदमी कहता है मेरा माल, मेरा माल, मेरा, उसका माल जो वो है, जो उसने खा लिया और वो खत्म हो गया, जो उसने पहन लिया और पुराना कर दिया, या जो उसने अल्लाह के रास्ते में आगे दे दिया, बाकी तो सब यही रह जाना है। तो माल और बेटे तो कायम नहीं रहते, मगर हाँ मोमिन जो है वो इनके जरिए भी कमाई कर लेता है, इनके जरिए भी कमाई कर लेता है। वो कैसे कि इनके जरिए ये टूल्स समझ ले, इनको टूल्स बना लेता है अपने लिए बाकियात तो सालेहात के लिए, यानी औलाद को नेक कामों की तलकीन करता है, उनको अपने लिए सदका जारिया बना लेता है, औलाद को नमाज सिखाता है, कुरान सिखाता है, उसको दीन की तालीम देता है, अल्लाह की पहचान कराता है, उनकी तरबियत ऐसे करता है, वो अच्छी निकलती हैं, वो नेकियां करती हैं, वो वालदेन के लिए सदका जारिया बनती हैं, तो उसकी बात है या तो सालेहात। बाकी जब तक औलाद जिंदा रहेगी और वो नेकियां करती रहेगी, इसके काम चलते रहेंगे, इसका इसकी बाकी या तो सालेहात बाकी रहने वाली नेकियां। लेकिन अगर बच्चों को सिर्फ यही सिखाया कि अपने करियर बनाओ, बच्चों तुमने पैसा बहुत कमाना है, बच्चों तुमने नामवरी कमानी है यहाँ पे, बच्चों तुमने बिजनेस ऐसा बनाना है, तुमने इस प्रोफेशन में जाना है तो इसमें पैसा बहुत है, बच्चे को डांस में डाला हुआ है, बच्चे को नाचने गाने का माहिर बनाने की कोशिश है, म्यूजिक क्लासेस दिलाई हुई है फलानी जगह पे, फलानी जगह पे, और इसी के ऊपर फखर है, और हम अपने बच्चों को मौलवी नहीं बनाना चाहते, हमारे बच्चों को दीन की बात कोई सीखे या समझे हैं या उसके ऊपर चलें, तो ये हमने उनको एक्सट्रीमिस्ट थोड़ी बनाना है। और बच्चों पे अगर इस बात पे फखर हो रहा है कि वो मॉडर्न ज्यादा है, वो दुनियादार ज्यादा है, वो वेस्टर्न नजर आए, और उनको स्कूलों में भी ऐसे में डालें जिसमें वो ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न नजर आए, हमारे मुल्कों में तो यही दिमाग में है ना, जिसमें ज्यादा वो दुनियादार और मॉडर्न हो, तो ऐसे तौर तरीके अगर करेंगे और इसी पे फखर करते जाएंगे कि जी मेरा बच्चा तो देखें मतलब इस तरह से ड्रेसअप होता है, या इस तरह से उस वो इस बिजनेस के अंदर या इस प्रोफेशन में, और बच्ची जो है वो बेहिजाब ही फिर रही है, तो इसके ऊपर फखर है, या मस्जिद और दाढ़ी और हिजाब से एलर्जी है, और बच्चों को भी यही कह रहे हैं कि भाई बच्चों आपने ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, बच्चों को इनसे दूर रखते हैं, और बहुत तीर मार दिया तो किसी कारी साहब को रख लिया कि वो बच्चे को पढ़ा दे कुरान, बस नाजरा पढ़ा दिया, बस इतना बहुत काफी है, कमाल हो गया जी, इसके आगे कुछ नहीं है। तो ऐसी औलाद फिर बाकियात तो सालेहात या सदका जारिया बनने के काबिल नहीं होगी। तो बाकी रहने वाली नेकियां तो वही हैं जो चाहे आप माल के जरिए कमा लें, चाहे आप औलाद के जरिए कमा लें, इनको टूल्स बना लें। ये सीढ़ी है, सीढ़ी है, ठीक है। इनको क्योंकि देखिए आपसे सरम ने फरमाया ना, तीन चीजें हैं जो सदका जारिया, या तो माल है आप अल्लाह के रास्ते में लगा लेते हैं, वो आपने मस्जिद बनवा दी, किसी को कुरान सिखा दिया, किसी बच्चे की फीस दे दी कि वो दीनी तालीम ले ले, वो स्कॉलर बन गया, वो आगे काम कर रहा है, तो वो, या आपका इल्म है जो आपने इल्म किसी को सिखा दिया, किसी को नमाज रोजा वुजू सिखा दिया, करता रहेगा आपके चलते रहेंगे अकाउंट, या फिर आपने किसी को अपनी औलाद को नेकी की तरफ तलकीन दे दी, वो आपके लिए सदका जारी। तो यही सदका जारिया के काम है। तो ये जो माल और बनून है, ये भी वाकयात तो सालेहात को कमाने का जरिया बन सकती हैं हमारे लिए, लेकिन अगर इनको सिर्फ जीनत ही बनाए रखा कि इन्हीं से शो शाह में लगे रहे, तो ये अल्लाह के यहाँ कुछ भी दर्जे नहीं दिला सकती। ठीक है, अल्लाह रहम करे कि बाज लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी औलादें उनके लिए यानी उनके गुनाह आगे बढ़ाने का जरिया है, इसलिए कि वो ऐसी औलाद दुनिया में छोड़ जाते हैं जो पीछे से नाच गा ही रही हैं, या पीछे से हराम में ही पड़ी हुई हैं, उन्होंने तवज्जो ही नहीं दी, उन्होंने भी उनको यही सिखाया, औलाद भी इसी चीज में लगी रही, और उसके बाद फिर क्या उनकी कमाई में तो इजाफा, नेकियों में तो क्या होगा, गुनाहों में इजाफा करने का बायस बन जाती है। तो बता दिया गया कि हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, बाकियात और सालेहात पे, जो हमारे साथ रहनी है, जो बाकी रहनी है नेकियां। तो इसलिए इस बाकी रहने वाली नेकियों की तरफ तवज्जो कीजिए। इंसान की आखरत इन पे डिपेंड करती है, इन्हीं चक्रों में ना रहे कि दिन हो रहा रात हो रहा है, और दिन हो रहा रात हो रहा है, और कमाईयां ही करते जा रहे हैं, और बस और किसी तरफ तवज्जो नहीं है। तो याद रखिए, जैसे मैंने आपको कहा, इनको बुरी चीजें नहीं कहा गया, मगर ये टेस्ट हैं, तो इनको टेस्ट ही समझे। ये ना हो कि इस औलाद के पीछे इंसान अल्लाह को भूल जाए, ये ना हो कि इस औलाद के नाज नखरे उठाने के लिए या इन्हीं की जिद पूरी करने के लिए इंसान हराम खा रहा है, हलाल खा रहा है, कोई परवाह नहीं है, बस बच्चे ने जिद कर दी है, बच्चे ने कहा है मुझे ये चीज चाहिए, बच्चे ने कहा है मुझे फलां वेकेशन पे जाना, बच्चे नहीं मानते, बच्चों का क्या करें। ये इंसान इतना इनके पीछे अपने दीन ईमान को खो देता है, और फिर इंसान ऐसा भी होता है कि जब ये चीजें मिल जाती हैं, तो बाज दफा ये भी हो जाता है, इंसान सोचता है कि मुझे अब अल्लाह अल्लाह की क्या जरूरत है, मेरे पास माल भी इतना है, मेरे बच्चे भी अच्छे बन गए हैं, लायक हो गए हैं, लायक निकल आए हैं, तो वो कहता है कि मुझे क्या अल्लाह ताला की तरफ रगबत करने की जरूरत है, तो वो अल्लाह को ही भूल जाते हैं। तो इस तरह से भी ये चीजें अपने अंदर गुम कर लेती। तो बाकियात तो सालेहात में रहना। आपसे सलम ने बकरी सदका करने का हुक्म दिया था आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को, तो उन्होंने गरीबों मिस्किनों में बांट दिया उसको, बकरी को। तो जब आपसे सलम वापस आए तो पूछा कि कुछ बच गया है, फरमाया हाँ सिर्फ एक दस्ती बच गई। ये शोल्डर का मीट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, फेवरेट था, तो उन्होंने वो नहीं था दिया, उनके लिए रख लिया। कहने लगी सब चला गया, सिर्फ ये बच गई है। आपसे सलम ने क्या फरमाया, इतनी जबरदस्त बात है ना, देखिए ये सोच की बात होती है। अब सोच क्या है, ये बच गया, बाकी तो सब चला गया। आपने सब फरमाया बाकी सारा बच गया, सिर्फ ये ही रह गई है, बाकी तो सारा बच गया, इसलिए कि वो जो दिया है ना, वो तो बच गया है, वो तो बाकी आ तो सालेहात है, वो बच गया है। देखिए मतलब माइंड सेटिंग की बात है ना। अब हमारे पास सेविंग है, हम कहते हैं ये मेरी सेविंग है, सेविंग तो कभी हमने ये सोचा, सेविंग वो है जो मैंने सदका कर दी, वो है सेविंग, ये तो चली जानी है, इधर चली गई उधर चली गई इधर चली गई, पता नहीं खत्म हो जानी है, वो सेविंग है जो अल्लाह के पास चली गई, वो है सेविंग। कभी इस तरह से सोचा है आपने? हमें ऑलवेज लगता है ये चला गया जो मैंने सदका कर दिया, इतना मैं दे दिया, वो दे दिया नहीं, वो आपने सेव कर लिया, सुभान अल्लाह। तो हम अपनी इस तरह की मेंटेलिटी बनाएं। अब देख लेना यहाँ पे कहा गया, ये बेहतर है सवाब के दरवाजे से, ये बेहतर है उम्मीद के दरवाजे से, उम्मीद रखनी तो इनसे रखो, ये बेहतर है। जबकि हमें क्या चीज बेहतर लगती है, हमें बेहतर लगती है कि वो सीईओ बन गया उस कंपनी का, वो फलां टेस्ला चलाता है, वो फलां किस्म के घर के अंदर रहता है जो इतने बेडरूम्स का है, वो लेटेस्ट फलां फैशन के कपड़े पहनता है, उसने फलां की डिजाइनर की घड़ी पहनी हुई थी फलां। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दो नफल जो सुन्नत आप फजर के वक्त पढ़ते हैं ना, ये दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे बेहतर है। कभी हमें ये भी बेहतर लगे, कभी इस बात का यकीन है आपको कि ये बेहतर है? हमें तो नहीं कभी बेहतर लगते, हमें ऐसे ही लगते हैं। हमें तो लगता है कि वो ये बेहतर है, ये वाली गाड़ी, ये वाला घर, ये बताया गया, ये बात, या तो सालेहात बेहतर है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हमें ये बेहतर लगे? ये तो ऐसे ही है, हाँ हमारी आंखें फटी रह जाती हैं, खुल जाती हैं जिस वक्त हम ऐसी गाड़ी और ऐसे घर और ऐसी चीजें देखते हैं। हमारे पैमाने कितने फर्क है, और अल्लाह ताला की तो बिल्कुल उसकी नजर में कितनी चीजें फर्क है, हमारी नजर किस तरह की है, अल्लाह के हाँ क्या चीज है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमें वैसी बनानी होगी, तभी तो हम इन चीजों के लिए स्ट्राइव करेंगे, बाकी या तो सालेहात के लिए। अगर हमारी नजर वो है जो जैसी बाकी काफिर की भी तो नजर यही है, हमारी भी वही नजर है, तो फिर क्या फर्क है, क्या चीज है जो हमारी डिफरेंट है? हमें ये नजर बनानी है जैसे कुरान हमारी नजर बनवा रहा है, कुरान हमें देखना सिखा रहा है कि तुम्हारी माइंड सेटिंग ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारी नजर ये होनी चाहिए, तुम्हारी नजर डिफरेंट होनी चाहिए दूसरों से। लेकिन मेरी नजर डिफरेंट नहीं है, मेरी नजर ऐसी नहीं है कि मुझे बाकियात तो सौलियात खैरुन नजर आए, बेहतर नजर आए, क्योंकि मेरी नजर कुछ और चीजों को बेहतर समझती है। इंदा रब्बी का, तुम्हारे रब के नजदीक, हाँ दुनिया के नजदीक ये नहीं होगी, दुनिया के नजदीक बाकियात तो सौलियात शायद कुछ भी मैं हैसियत ना रखती हूँ, दुनिया उसको बिल्कुल ऐसे हंसती हो इस बात के ऊपर, लेकिन इंदा रब्बी का, तुम्हारे रब के नजदीक ये है जो बेहतर है चीज, ये है जो तुम्हारे फायदे की चीज है। अब आ, 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 शिफ्ट करें हम सब अपने माइंड को इस तरफ, शिफ्ट करें अपनी सोच को, बनाना है, रीशेप करें। एक वो सोच है जब से हम पैदा हुए, हम स्कूलों में गए, हम पले बड़े कॉलेजों में गए, हमें सारा वक्त यही दिखाया जाता रहा, अलमाल वल बनून, अलमाल वल बनून खैरुन, अलमाल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया, बस यही है, ये जीनत है, बस इसके पीछे ही भागो, यही है सब कुछ, यही है, ये मिल गया यू आर सक्सेसफुल, यही है बेस्ट चीज जो तुम्हें बेस्ट बनाती है। तो हमने भी उसी तरह सीख लिया, हमने भी इसी तरह समझ लिया। अब कुरान हमें बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज बता रहा है, तो जब तक हम चेंज नहीं ना करेंगे माइंड सेटिंग, हम पढ़ लेंगे इन आयात को, हमें टेस्ट भी दे देंगे, लेकिन व्हाट आफ्टर दैट, अगर मेरी माइंड सेटिंग ही चेंज नहीं हुई, अगर मुझे समझ लिया आयत को, तर्जुमा याद कर लिया, लेकिन मेरा माइंड बदला नहीं, इसके मुताबिक मैंने उसको चेंज नहीं किया, तो कुछ फायदा नहीं मैंने पाया। तो शिफ्ट करना है, अपनी सोच को बदलना है। दुनिया हमें एक सोच की तरफ लेकर जा रही है, हमने बिल्कुल ऑपोजिट सोच की तरफ जाना है, रीशेप करें और सोचें कब्र में मेरे साथ कौन जाएगा, क्या ये पैसा या ये बच्चे या बाकियात तो सालेहात, क्योंकि इन बाकियात तो सालेहात अगर ये साथ जाएंगी, ये होंगी, तो इसकी बेस पर मेरी अगली जिंदगी, ना खत्म होने वाली जिंदगी डिटरमिन होगी कि वो कैसी होती है, मैंने कहाँ रहना है हमेशा के लिए, वो डिटरमिन होगी इसकी बेस पे। हदीस में आता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन आदमी वो है जिसकी उम्र लंबी हो और वो नेक अमल करे, यानी अल्लाह ताला ने उसको उम्र तो लंबी दी, उसमें तो उसका कोई कमाल नहीं, अल्लाह ने उसको लंबी उम्र दी, लेकिन उसने सारी जिंदगी से फायदा क्या उठाया, नेकियां करता रहा, नेकी पे जमा रहा, क्योंकि जितनी लंबी उम्र है उतनी नेकियां करते रहना करते रहना करते रहना, उस पे जमे रहना सारी जिंदगी, ये कोई आसान काम थोड़ी है। लेकिन लोग इस नेमत से फायदा नहीं उठाते। इसीलिए फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं जिनकी लोग सबसे ज्यादा नाकदरी करते हैं, सेहत और फरागत। सेहत आपके पास है, उसको भी नहीं फायदा उठाया कि उस सेहत के जमाने में कुछ कर लेते। फरागत आपके पास है तो जूं ही फारिग होते हैं तो दिमाग में क्या आता है, हाँ बोर हो रहे हैं हम, चलो कोई मूवी देखने चलते हैं, चलो कहीं बाहर वेकेशन पे चलते हैं। फारिग हुए, जहां छुट्टी मिली उसी वक्त वेकेशन के ख्याल आने लगते। कभी नहीं इंसान सोचता कि मैं अब कुरान उठा लूं, मैं अब अपनी बाकियात सालेहात बढ़ा लूं, मेरे पास फारिग वक्त आया। फारिग वक्त को क्या, अगर बूढ़े वालदैन भी होते हैं तो बच्चे क्या कहते हैं, आप सारा दिन क्या करते रहते हैं, बोर होते रहते हैं, चले मैं आपको कोई मूवी दिखा के लाती हूँ या ये मूवी देख लें। ना उनके हाथों में भी कोई गैजेट्स पकड़ा दिए हैं कि बस आप यही करते रहे, आप भी फेसबुक देखा करें, आप भी ये था, हमारे तो सर से उतरे हैं, हमें ना कुछ करना पड़े। तो फारिग वक्त के उनको भी वही मशगलों पे लगा दिया, खुद भी उन्हीं कामों पे लगे हैं। हम सोचते ही नहीं कि ये जिंदगी की मुहलत जो थोड़ी देर की बहार आई हुई है, ये जल्दी फिजा में बदल जानी है। मुझे इस फरागत से फायदा उठाना है, ये फरागत ही है, ये सेहत। और ये चाहे हम कहें, अब हर एक कहता है मेरे पास इतना काम इतना काम, उसके बावजूद ये फरागत ही है। अभी वो नहीं है जो कि हम समझते हैं कि हम बड़े मसरूफ हैं। अगर हम इतने ही मसरूफ होते तो हमें ये फोन चेक करने का टाइम ना मिलता, हमें ये टिकटॉक और फेसबुक और इंस्टाग्राम और पता नहीं क्या क्या इनके ऊपर जाने का टाइम ना होता। ये एक फरागत का मसरूफियत का एक नाम है जो हमने अपने आप को दे दी कि बिजी बहुत है, हम बहुत बिजी हैं। बिजी किस चीज में है अगर देखें तो सही, किस चीज में बिजी हैं, तो यही चीजें आपको नजर आएंगी। बिजी बहुत है अगर तीन एक दिन में दो दो दफा तीन तीन दफा खाना खा रहे हैं और दो दो खाने बना रहे हैं और फिर डिजर्ट भी हो रहे हैं और फिर यहाँ घूमने जा रहे हैं और फिर वहां से आ रहे हैं और फिर ये शॉपिंगों में जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं बिजी बहुत है। ये बिजी नहीं है, असल में आपके पास फरागत बहुत है इसलिए ये कर रहे हैं सब। लेकिन अपने आप को हम दिखाते हैं कि हम बिजी बहुत है, लेकिन एक दिन आएगा फिर इंसान पीछे मुड़ के देखेगा तो उसको लगेगा हाय वो फरागत थी मेरे पास, मैंने क्यों ना उस वक्त से फायदा उठा, तब समझ आएगी कि वो फरागत थी। आज कौन सा बंदा ऐसा है जो कि इन सोशल मीडिया की साइट्स पे नहीं है, हर बंदा है, हर एक अकाउंट है, जिसका मतलब इतनी तो फरागत है ही ना कि इन सबको चेक करते हैं, देखते हैं, इन पे टाइम गुजारते हैं, कोई 2 घंटे, कोई 4 घंटे, कोई उतना मूवीज देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, उनमें कितना टाइम चला जाता है। तो ये आज जिसको हम बड़ी मसरूफियत कह रहे हैं, एक दिन समझ आएगी कि ये वक्त भी हमारे पास था, हमने इससे फायदा ना उठाया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला दिखा रहा है फिर वो सीन, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। अभी बताया ना कि क्या चीज है जो इंपॉर्टेंस रखती है और कौन सी चीज है जिसको तुमने समझा हुआ है कि जो है ये है बस, जिसके ऊपर लगा दो अपना वक्त और सब कुछ। तो एक वो सीन दिखाया बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके आगे, एक ऐसा सीन दिखा दिया कि जब वो आ जाएगा ना तो पीछे पलटना मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। वो क्या सीन है, सुभान अल्लाह, ये भी अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि वो वहां जाके दिखा देता है हमें। तो वहां चलें, देखते हैं क्या अल्लाह ताला हमें दिखा रहा है। आए कुरान है ना, सुभान अल्लाह, ये कुरान ऐसा है कि आपको वो दुनिया जो गैब की दुनिया है, जो फ्यूचर जो अभी तक आया नहीं और पता नहीं कब आएगा वो वक्त, उसको ऐसे हमारे सामने एक तस्वीर बना देता है कि इंसान को लगता है कि मैं उस वक्त में पहुंच गया हूं। उस वक्त में जब इंसान पहुंचेगा तब तो ख्वाहिश तमन्ना भी करता रहेगा ना कि मैं वापस चला जाऊं, तो नहीं जा सकेगा। मगर आज हम अपनी इमेजिनेशन में अगर वहां पहुंच जाते हैं तो हम वापस आ सकते हैं। वो क्या वक्त है, वह यौमन सय्यरुल जिबाल, और जिस दिन हम चला देंगे ना पहाड़ों को, वह तरल अर्दा बारिजतन, और तुम देखोगे जमीन को बारिज, बिल्कुल खुली भी, जाहिर जमीन ऐसे हो जाएगी सबके सामने आ जाएगी। इसके एक तो माना ये है कि यानी जमीन बिल्कुल फ्लैट कर दी जाएगी, जमीन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ना कोई वैलीज है, ना कोई पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ कैसे करे जाएंगे, चला दिए जाएंगे। बुस्सा तिल जिबालु बस्सा, ना पहाड़ तो ऐसे हवा मुंबस्सा कर दिए जाएंगे, उड़ा दिए जाएंगे, बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे, बादलों की तरह, जैसे जैसे दांत है ना उखाड़ा जाता है अपनी जड़ों से, इस तरह पहाड़ों को उनकी जड़ों से उखाड़ दिया जाएगा, उखाड़ के फिर उसके बाद उनको पीसेस करके क्रश कर लिया जाएगा, ऐसे जैसे पाउडर होता है। और फिर वो तो जाहिर है जब कोई पाउडर चीज है तो वो तो बादलों की तरह ऐसे हो जाएगी, इसीलिए कहा गया ना ये बादलों की तरह चलेंगे। अल्लाह हू अकबर। और इससे इंसान को समझा दिया गया कि देखो ये है जो यहाँ पे होने वाला है, ये पहाड़ अगर ऐसे हो जाएं जिनको तुम इतना स्टेबल समझते हो, इतना मजबूत समझते हो, तो सोचो कि फिर औरों का क्या हाल होगा। और ये जमीन जो कि तुम्हें बिल्कुल सीधी और वो लगती है कि बिल्कुल ये भी स्टेबल है, ये भी हिला मारी जाएगी। जुलजिला जलजला ऐसा आएगा, ऐसे हिला मारी जाएगी, वह इजल अर्दुमुद्दत, ये भी है ना फ्लैट कर दी जाएगी बिल्कुल सीधी। और एक दूसरा माना इसका, ये तो एक माना हो गया ना, इसका दूसरा माना ये है कि ये जमीन बारिजा खुली भी हो जाएगी, यानी जाहिर होगी ना, जाहिर माना बारिश का मतलब, यानी जाहिर करने वाली हो जाएगी, यानी इसके अंदर जो कुछ है ये जाहिर कर देगी। क्या क्या कुछ है इसके अंदर, कितने इंसान हैं जो आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, कितने इंसान इसके अंदर हैं, कितने ही जानवर हैं, कितने ही चरिंद परिंद हैं, सब इसके अंदर ही गए हैं, कितनी इसके अंदर खजाने हैं, या जो कुछ भी इसके अंदर धाते हैं, या जो कुछ, सब उगल देगी, बाहर कर देगी, खाली हो जाएगी सब उलट के। वलकत माफी हा व तखलत आता है ना, तो सब कुछ उलट के और अंदर से इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। सोचे जरा कि कितना कुछ है इसके अंदर और सब बाहर आ जाएगा तो क्या होगा। अल्लाह अकबर। यानी हमें बताया असल में ये जा रहा है कि इस चीज की फिक्र करो, इस दिन की फिक्र करो, इस दिन बाकियात सालेहात ही काम आनी है। हशर ना हो, हम जमा कर लेंगे इनको, फलम नुगादिर मिनहुम अहादा, हम इकट्ठा कर लेंगे इनको और एक भी इनमें से बाकी नहीं बचेगा। मिनहुम का मतलब क्या, जो भी जमीन पे है ना उन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे। यानी क्या कुछ है, क्या सिर्फ इंसान है जमीन पे, इंसान भी है और जमीन के ऊपर और इसके नीचे इसके अंदर हर चीज, मैंने अभी बताया ना कितने जानवर हैं, कितने, हत्ता कि एक मक्खी को भी जमा कर लिया जाएगा, हत्ता कि हशरातुल अर्द जितने भी हैं सबको जमा कर दिया जाएगा। इजल वहूश हुशीरत, वहशी जानवरों को भी जमा कर लिया जाएगा। यानी हदीस में हम देखते ना कि एक बेसिंग बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा होगा तो उसको भी अल्लाह ताला हिसाब के लिए उस दिन जमा कर लेगा। तो सोचेंगे कोई बचेगा नहीं, कोई भी नहीं बच सकता। और सूरह अनाम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वमा मिन दाबतिन फिल अर्दी वला तायरी यतीरु बिजनाहिही इल्ला उममुन अम्सालुकुम, ये भी तुम्हारी तरह की उम्मतें हैं और इनको सबको अल्लाह ने जमा कर लेना, किसी को छोड़ना नहीं, कहीं कमी नहीं होगी। तो कोई इसका मतलब छुप नहीं सकेगा, कोई भाग नहीं सकेगा, कोई कहीं जा नहीं सकेगा, हर एक को हाजिर होना होगा। अब यहां पर आप देख लें किसी जगह पे भी कहीं पे भी अपॉइंटमेंट हो, 100% लोग नहीं हाजिर हो पाते, कोई क्लास हो, कोई कोई बीमार हो गया, कोई कहीं वेकेशन पे चला गया, कोई कहीं उसको जरूरी काम कोई पड़ गया, कोई ट्रैफिक में फंस गया, कोई कुछ हो गया, नहीं आ पाते, सब नहीं आ पाते। लेकिन यहां पर देखें, सब हाजिर हैं। बूढ़ा तरीन इंसान जो चल भी नहीं सकता था वो भी आ गया, और मक्खी मच्छर से लेकर बकरी गाय हर चीज आई खड़ी है। अल्लाह अकबर। तो यानी अल्लाह ताला हर एक लिविंग थिंग को जमा कर लेगा, चाहे जिन है या इंसान है। और फिर फरमाया वाउरीदु आला रब्बी का सफा, सब अपने रब के सामने सफों में खड़े होंगे। ऐसे नहीं कि हैजर्ड खड़े हुए, कोई ऐसे नहीं कि एक हजूम ही है, सफों में खड़े होंगे। दुनिया में तो सफ बनाने को कह दें तो एक मस्जिद में भी एक सफ भी सीधी नहीं होती, कोई बीच में कुर्सी रख के बैठ जाता है, वो सफ ही तोड़ देता है। और सफ जो होती है वो खड़े होने से होती है, बैठे भी नहीं होती, इसका मतलब कोई बैठा नहीं होगा वहां पर। यानी इतना छोटा बच्चा भी जो दुनिया में पैदा हुआ, और ऐसा बच्चा जो गिर गया वो भी उस दिन होगा। यानी गिर गया से मतलब ये है कि एबॉर्ट हो गया था या उसको एबॉर्ट करा दिया गया था, लेकिन उसमें रूह पड़ गई भी थी, वो बच्चा बन गया हुआ था, वो भी उस दिन होगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। लेकिन क्या चीज नहीं होगी, क्योंकि जमीन तो फ्लैट हो चुकी है, ना घर होंगे, ना गाड़ियां होंगी, ना कपड़े होंगे, ना जूते होंगे, ना मेकअप होगा, ना ज्वेलरी होगी, ना नाश्ता होगा, ना लंच होगा, ना डिनर होगा, कोई किचन ही नहीं होगा, ना कोई बाथरूम होगा, ना कोई दुकान होगी, ना फोन होगा, ना इंटरनेट होगा, ना अखबार होगा, और ना ही कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी, ना दोस्त अहबाब होंगे, ना कोई बच्चे वालदेन, ना हमसाए, कोई भी नहीं होगा। ये नहीं कि वैसे नहीं होंगे, मौजूद तो होंगे हम, अगर वो अपने नहीं होंगे। अल्लाह अकबर। ना कोई पुरसाने हाल होगा। आज तो हम फौरन कह देते हैं ना, हुकूमत हमारी इमदाद के लिए नहीं आई, तो वहां पे तो कोई भी ऐसे हुकूमत के उहदेदार नहीं होंगे, कोई एनजीओ नहीं होगी। अल्लाह अकबर। और सफ दर सफ सबने खड़े होना, सफों में खड़े होंगे। और इसके बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहले जन्नत की 120 सफें होंगी कयामत के दिन। इसका मतलब है कि जन्नत वालों को अलग खड़ा किया जाएगा, जहन्नम वालों को अलग किया खड़ा किया जाएगा, इससे तो यही पता चलता है। और फरमाया कि उसमें से 80 सफें मेरी उम्मत की होंगी, बाकी 40 सारी बाकी उम्मतों की होंगी। हमें यह भी पता चलता है कि हर पैगंबर के पीछे उसकी उम्मत होगी, तो इसका मतलब है कि पैगंबरों के साथ उनकी सफें उम्मतें सफों में खड़ी होंगी, ये भी समझ में आता है। एक हदीस से पता चलता है कि किताब तौहीद में यह हदीस है कि अल्लाह ताला कयामत के दिन आवाज देगा, एक ऐसी आवाज जो ऊंची होगी मगर खौफजदा करने वाली ना होगी। इस आवाज को महशर में सब सुनेंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, है मेरे बंदो, मैं अल्लाह हूं, आज कोई भी इला नहीं है, और मैं अरहमुर राहिमीन हूं, और अहकमुल हाकिमीन हूं, और असरउल हासिबीन हूं। इस आप में यानी सबसे ज्यादा जल्दी करने वाला। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, मेरे बंदो, आज तुम पर कोई खौफ नहीं, ना तुम गमगीन होगे, बस इतना करो कि अपनी दलील लेकर मेरे पास आओ। यानी जो भी तुमने काम किए हैं ना दुनिया में, उसकी दलील लाओ कि क्यों किए हैं तुमने, और हम आज तुमसे सवाल करेंगे। तो जो कोई सवाल किया जाए वो आसान जवाब तलाश कर ले, इसलिए कि आज सवाल किया जाएगा ना, तो तुम्हारा आज हिसाब किताब होना है। ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इन बंदों को सफों में खड़ा कर दो, इस तरह के अपने पाँव की उंगलियों के बल ये खड़े हैं, तो उनको खड़ा कर दिया जाएगा हिसाब किताब के लिए, पाँव की उंगलियों के बराबर ऊपर। इतना रश होगा, इतनी मखलूक है, लेकिन सबको खड़ा किया गया। और एक अल्लाह अकबर, एक जगह पे आता है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहबार जो आपको पता है ना, यहूदियत से इस्लाम लाए थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे यहूद के, तो उनसे फरमाया कि हमें कुछ आखरत की याद दिलाओ। तो उन्होंने फरमाया जिस रोज रोजे हशर होगा तो इंसान, हर इंसान के हाथ में उसकी किताब होगी, उसका नाम आया अमाल होगा, जिसको इंसान देखेगा तो नेकियां बिल्कुल जाहिर होंगी, मगर इंसान वो इंसान अपनी बुराइयों को देखेगा कि मैंने कौन कौन सी बुराइयां की हैं, उसको डर लगेगा ना, वो अपनी बुराइयों की तरफ, नेकियां भी लिखी हुई है लेकिन वो अपनी बुराइयों को पढ़ेगा, हाय मेरी ये भी बुरा, ये भी बुरा, जब वो अपनी बुराइयों को सारी पढ़ लेगा फिर अपनी नेकियां पढ़ने लगेगा, पढ़ पढ़ के फिर आखिर में जब एंड में आएगा, नेकियों का खत्म कर लेगा ना, तो एंड में लिखा होगा जाओ हमने तुम्हें माफ कर दिया। इस मौके पर वो कहेगा हाओ मुकराओ किताबिया, देखो लोगों मेरी किताब पढ़ो जो सूरह हाका में है, मुझे यकीन था मेरा हिसाब होगा, मुझे यकीन था मेरी पूछ गिछ होगी, मैंने बड़े ध्यान से अमल किए। इसी तरह एक आदमी जो फासिक फाजिर होगा ना, वो भी अपना नामा अमाल खोलेगा, उसकी बुराइयां लिखी होंगी और नेकियां भी लिखी होंगी, मगर वो अपनी नेकियों को पढ़ने शुरू कर देगा, बुराइयों को छोड़ देगा, कहेगा मेरी तो कितनी नेकियां, कितनी नेकियां। जब सारी नेकियां पढ़ लेगा तो फिर अब उसकी बुराइयां आगे आएंगी, वो उनको पढ़ेगा, तो आखिर में लिखा होगा ये तुम्हारे गुनाह हैं जिनकी वजह से तुम्हारी बख्शिश नहीं है आज, तब वो कहेगा काश मैंने अपना नामा अमाल ना पाया होता, काश मौत मेरा खात्मा कर देती। हजरत उमर ने ये बात सुनी तो उनका दिल पसीज गया, रोने लगे। इसे पता चलता नसीहत सबके लिए, क्या हजरत उमर नहीं जानते थे सारी ये बातें, मगर फिर भी वो चाहते थे हमें नसीहत की जाए, हमें बताया जाए, हम आज नहीं चाहते हमें बताया जाए, नहीं सुनना चाहते ऐसी बातें जिससे हमें रोना आ जाए, जिससे हमारा दिल नरम पड़ जाए, क्योंकि हम कहते नहीं नहीं हमने नहीं सुना, हम इस तरह डर जाते हैं। वो कह के सुनते थे, कहते थे हमें कोई आखरत की याद दिलाए, कोई बात बताए, हमें कहा भी जाए तो हम भागते इन बातों से, कितनी गफलत है हमारे ऊपर, सुनना तक भी नहीं चाहते और क्या करेंगे। तो उस दिन साफ दर साफ सब लोगों को खड़ा किया जाएगा, कितनी सफे होंगी वल्लाहु आलम, कितनी सफे होंगी टोटल, कितनी सफों में लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, अगर ये जरूर पता चलता है कि वहां पर भी सफे बनेंगी, आप चाहे यहाँ पे सफ बनाना सीखे ना सीखे, वहां पे भी जाकर सफ बनानी पड़ेगी। और फिर क्या होंगे, लकद जी तुमुना कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रा, अल्लाह अकबर, देखो लोगो हम तुम हमारे पास आ गए ना इसी तरह जैसे हमने पहली मर्तबा तुम्हें पैदा किया था। कि पहली मर्तबा कैसे पैदा किया था, नंगे जिस्म आए थे दुनिया में, कपड़े नहीं पहने हुए थे, बेखतना आए थे, खतने नहीं हुए हुए थे, पैर भी नंगे थे वैसे ही आए, बेसरो सामानी की हालत में थे, खाली हाथ थे ना, खाली हाथ ही वहां पर पहुंचोगे। अब देखें आप जरा कि इंसान किस तरह से अल्लाह के यहाँ खड़ा होगा, कि वो दोस्त अहबाब है लेकिन आज वो दोस्त अहबाब तो ऐसे ही है कि इंसान इतने हजूम में भी बिल्कुल अकेला, पहली दफा जैसे पैदा हुआ था तो बिल्कुल अकेला ही था ना, अल्लाह के हत्ता के कहा गया कि इंसान उसी तरह पैदा होगा जैसे वो दुनिया में पैदा हुआ था, यानी अगर उसके कोई ऑर्गन्स दुनिया में निकाल दिए गए, मसलन किसी के कोई ट्रांसप्लांट हो गया, कुछ चीज निकाल दी एक, या मसलन उसका दांत निकाल दिया, या उसके कोई उज्व जो बेकार हो गया था वो काट दिया गया था दुनिया में, वो पैदा तो उसके साथ हुआ था और हाथ पैर कहीं काट दिए गए, तो अब वो वहां पर उनके साथ पैदा होगा, हत्ता के वो जो खतने में जितना हिस्सा उसका निकाल दिया गया था वो भी निकला हुआ नहीं होगा, वो भी उसको लेकर पैदा होगा, इसीलिए तो बेखतना होगा ना, बेखतना होगा वो हिस्सा भी उसका, वापस उसको करके उसको वैसे खड़ा किया जाएगा। तो ये भी बड़ा ही मुश्किल वक्त होगा, इसलिए कि इंसान कि जो एक नेचर है ना वो ये है कि चाहे वो कितनी मुश्किल के अंदर हो, कितनी भी परेशानी के अंदर हो, वो चाहता है और इससे वो उसका दिल बढ़ता है, उसको हौसला मिलता है जब उसके पास उसके कोई चार लोग आके खड़े हो जाते हैं, भले वो उसकी मुश्किल नहीं भी दूर कर सकते। क्यों हम किसी को अपना दुख सुनाते हैं? कि उसकी वजह यही होती है ना कि हमारे दिल को तसल्ली हो जाए, कोई दुख बांट ले, कोई हमारी बात सुन ले, चाहे वो कुछ भी नहीं कर सकता, बस वो सुन लेता है, वो उतनी ही हमें तसल्ली हो जाती, हमारा दिल जरा थोड़ी ऐसे लगता है कि जैसे हमारा दिल जरा ठहर गया, ऐसे होता है ना। इतनी बड़ी मुसीबत और कोई सुनने वाला नहीं, हजूम इतना बड़ा फिर भी हर इंसान अकेला, किसी के साथ कोई नहीं, हालांकि कहने को वो हजूम में खड़ा हुआ लेकिन कोई भी नहीं साथ, जैसे मरने वाला होता है, चाहे उसके गिर्द कितने भी लोग हो, उस वक्त फिर भी वो कहता है कि जो मेरी मुसीबत है किसी को पता ही नहीं, फिर भी इंसान को ये तसल्ली होती है मेरे पास कोई है, उसके पास तो कोई भी नहीं होगा। और फिर इसी बारे में तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि इंसान इस तरह नंगे पैर नंगे बदन और बगैर खतने के खड़ा होगा, तो आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा था ना कि औरतें मर्द सब होंगे तो एक दूसरे की तरफ देखेंगे नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आयशा वहां पर मामला इससे कहीं ज्यादा सख्त होगा कि लोग एक दूसरे की तरफ देखें, और ये तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई किसी को ना देखे इस दुनिया में। आप देखें कि कोई हसीन जमील लड़की आ जाए तो कोई बूढ़ा आदमी भी होता है उसका भी चेहरा घूम जाता है, वो भी देखने लगता है वहां पे कितनी हसीनाएं, कितनी खूबसूरत, कितनी जवान, कितनी ऐसी लड़कियां नंगे बदन खड़ी होगी, कोई देखने वाला नहीं होगा, कितने चोर डाकू और गंदे किस्म के लोग भी, जानी शराबी वो भी होंगे वहां पे, वो भी तक नहीं देखेंगे। इसका मतलब है कि क्या हाल होगा, इससे ही आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंसान किस पोजीशन में होगा, और नंगे बदन होंगे, सबसे पहले किसको लिबास पहनाया जाएगा, आप सोच रहे होंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं, इब्राहिम अलैहि सलाम को, उनको सबसे पहले लिबास पहनाया जाएगा। क्यों? बाज उलमा ये कहते हैं, बाज ने ये लिखा है कि उनके कपड़े रिप ऑफ किए गए थे जिस वक्त उनको आग में डाला गया था, तो अल्लाह की खातिर उनके वो लिबास उतारा गया था और उनको आग में डाला गया, अब अल्लाह ताला उनको सबसे पहले लिबास पहनाएगा। अल्लाह अकबर। तो बलजाम तुम अल्लाह अकबर, तुमने ये समझा हुआ था कि तुम्हारे कोई वादे का वक्त नहीं, उस वक्त कहा जाएगा, तुमने क्या समझ लिया था तुम्हें वापस आना ही नहीं है, तुमने क्या समझ लिया था वहीं बैठे रहना है तुमने, अल्लाह ताला का वादा है ना कयामत आएगी, अल्लाह का वादा है ना तुमने जमा होना है, ये अल्लाह का वादा है कि एक दिन ऐसा आने वाला है। इंसान कहता है ना वो कुछ नहीं होता, ये सारी एवं मौलवियों के डरावे हैं, कुछ नहीं है, ऐसे कहता है ना एक दूसरे को, तुमने क्या सोचा था कभी भी नहीं वापस आना तुमने लौट के, अब कितनी उस इंसान के लिए एम्बेरसमेंट की बात है, कितनी उस इंसान के लिए शर्मिंदगी है कि अब देख लिया ना तुमने, आ गए ना तुम तो कहते थे कोई कयामत ही नहीं। अल्लाह अकबर, कितनी खुली खुली आयतें हैं, कितनी खुली आयतें हैं कि इंसान कौन है जो इन आयतों को कहे कि मुझे समझ नहीं आ रही, कितने ही लोग हैं, जुबाने काल से तो नहीं कहते बेशक, जुबाने हाल से कह रहे हैं कुछ नहीं होना, कोई नहीं आनी, कयामत वामत कुछ नहीं है, ये सारी ऐसी बातें उनके दिल में यकीन नहीं है इसका, लेकिन अल्लाह ताला तो जानता है ना किसके दिल में यकीन है और किसके दिल में यकीन है ही नहीं, और वो यही समझता है कि ऐसे ही गेटअवे हो जाना है, तो अल्लाह ताला उस दिन उनको बता देगा, तुमने क्या ये समझा हुआ था, तुम तो यही समझते थे ना नहीं कुछ होगा, ये देखो आप।